الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چین کے ناظرین، پروگرام فیملی میٹرز لیے حاضر ہوں. ہمارے پاس آج بھی کئی سوالات جمع ہیں، اور مزید یہ کہ جو آپ کے سوالات آ جائیں گے انشاءاللہ ان کو بھی کوشش کریں گے ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیں. فیملی میٹرز ہیں اور کافی مسائل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلا سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر سے میرا جھگڑا ہوتا ہے اس وجہ سے، یعنی یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور مجھے یہ وسوسے سے آتے ہیں کہ یہ مطلب کہ مجھے چھوڑ نہ دیں، یعنی طلاق خلا کے وسوسے سے آتے رہتے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں. میری درخواست ہے آپ سے کہ اس معاملے میں ہرگز گھر میں جھگڑا نہ آنے دیں، میری درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام جو بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے. اس پر غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا ہے. اب اولاد کس کے حق میں بہتر ہے، کس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے. اب آپس میں جھگڑا کر کے آپ کون سی خوشیاں پالیں گے؟ اچھا، اولاد نہ ہونا ایک قسم کا آپ کے لیے دکھ یا درد یا تکلیف کا یا افسردگی کا باعث بنا ہوا، ٹھیک ہے، سیڈنس انوائرمنٹ کریٹ ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں. کیا جھگڑ کر آپ کی یہ غم خوشی میں بدل جائے گا؟ نہیں، اور غم بڑھے گا. یعنی ایک تو پریشانی آپ اپنے اوپر اور کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، اور دوسری پریشانی ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے. ایسا نہ کریں، عقل کی بات ہے کہ اولاد اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے، بیٹا دے بیٹی دے کچھ بھی نہ دے. تو یہ آپس میں اس موضوع پر جھگڑنا یا تانے دینا یا آپس میں کوئی اس موضوع میں بد مزگی پیدا ہونے دینا، یہ نہ ہونے دے. بلکہ میاں بیوی میں تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوئی بول بھی کیوں سکے. یہ عموماً باہر کے لوگ زیادہ اس میں چھیڑا چھیڑ چھیڑ کرتے، اچھا 3 سال ہو گئے، او ہو کچھ بھی نہیں ہوا، او ہو. اب یہ مطلب ویسے ہی مطلب کہ افسردگی میں ہوتے ہیں. اب آپ کو تو ہفتے دو ہفتے میں 3 ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوئی تو یاد آیا ہوگا کہ یہ بے اولاد ہے. اس بیچاری کو تو روز یاد آتا ہوگا ستا کہ میں بے اولاد ہوں. شوہر کو روز یاد آتا ہوگا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے. اس کو تسلی والے جملے دینے کے بجائے آپ زخموں کو کھرچنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو بھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس انداز کو اختیار نہ کریں. بولنا کیا ہے یہ تو غور کریں، لوگوں کو راحت پہنچانے والے جملے استعمال کریں. لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جملے کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے جملوں کا انتخاب کریں، اور جو ویسے غمزدہ پریشان حال ہیں ان کے غم و پریشانیوں کو دور کرنے والی بات کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو. تو بالکل اس کو آپ وہ اپنا مسئلہ نہ بنائیں، بے اولادی کو کوئی بھی اپنا مسئلہ نہ بنائیں. اللہ آپ کے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اولاد کا ایک روحانی علاج، یعنی اولاد جب بے اولادی ہو تو اس کا ایک روحانی علاج بتا دیتا ہوں کہ یا اولو 41 ٹائم، یا اولو 41 ٹائم روزانہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل साहिब औलाद हो जाएंगे, ये लिखा हुआ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, या अव्वलो, ये 41 टाइम 41 बार रोजाना पढ़िए, इंशाल्लाह अज़वजा साहिब औलाद हो जाएंगे, मुद्दत 40 रोज तक है। तो अल्लाह करम करे आपका घर खुशियों का गहवारा बने। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये सवाल भी मुझे, मैं कह सकता हूं कि कंटिन्यू आ रहा। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी गौर तलब ये भी, आप अगर कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं तो आपको एक बात का अंदाजा हो जाएगा कि कुछ मसाइल बहुत कॉमन से हैं, यानी कि मियां बीवी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, अब उसका कोई भी वजूहत अलग अलग है वो हम बयान कर रहे होते हैं। एक वजह जो भी बार बार आ रही है, जैसे औलाद नाफरमान है, ये बात बार बार आती रहती है। एक और बात कि वालिद गुस्सा करते हैं, बल्कि ये आया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपनी बेटी को मारता हूं तो मैं क्या करूं। अल्लाह कितनी अजीब सी बात है, अल्लाह आपको इस गुस्से से नजात दे जिस तरह का गुस्सा बयान कर रहे हैं। और मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, ये जो आपको एहसास हो रहा है ना कि मैं गुस्सा आता है, तो ये एहसास भी अच्छी चीज है। बंदों को तो एहसास ही नहीं होता, मारते पीटते रहते हैं, उनके पता नहीं क्या हो, उनको समझाओ तो कहते मैं क्या गलत करता हूं। आपको आपकी गलती का एहसास है, ये इस्लाह के लिए बेहतरीन जरिया है, एहसास है ना एहसास। बाद अवकात आपने मेरे इस प्रोग्राम में देखा होगा सवाल आते हैं कि मैं क्या करूं मुझ में ये बुरी आदत है, मैं क्या करूं मुझ में ये बुरी आदत है। ये जो क्या करूं है ना सवाल, ये एक आपका एहसास है, फीलिंग है, ये बहुत खूबसूरत होती है। नहीं यू समझे, मैं ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एहसास जो है ना किसी दिए में मौजूद, दिया जो होता है ना दिए में मौजूद तेल की तरह होता है, कि अगर दिए में तेल है ना तो आग जल सकती है, रोशनी हो सकती है। तो मेरी दरखास्त है इससे कि आप अपने एहसास को बाकी रखिएगा, जिनको भी अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी कमजोरियों का एहसास है ना, अपने एहसास को बाकी रखें और उसे खत्म करने की कोशिशें करें। और उसके लिए जो औरादो वज़ाइफ भी आपको दिए जाते हैं, इस पर भी यकीनन आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। तो ये प्यार करे उसको, मारने का दिल करे तो रुक जाएं, आगे पीछे हो जाएं, और उससे कुछ मतलब तोहफे तहफ की आपकी औलाद है ऐसा कोई सिलसिला शुरू करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके दिल में आपकी बेटी की वो मोहब्बत पैदा होगी जो उसको मार से बचाएगी, वरना बहुत गलत है। आपने ये, मैंने आपका ये सवाल पढ़ा तो मुझे खुद अजीब सी एक समझे कि वो अच्छा नहीं लगा, महसूस सा हुआ गया, बेटी को मारना है, बेटी पर तो वैसे बाप का हाथ नहीं उठता, और बेटियां बड़ी प्यारियां होती हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजलो करम फरमाए। अच्छा इसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि गुस्से को खत्म करने का एक तरीका कि चलते फिरते कभी कभी या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम कह लिया करें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, ये चलते फिरते पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप गुस्से में कमी वाकई हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और सवाल है, अगर शोहर बहुत सख्त हो तो क्या करे, इसकी सख्ती की वजह दरियाफ्त करे, गौर करे सख्ती की वजह क्या है। यानी एक होता मिजाज इतना सख्त नहीं होता, मेरी आदतों की वजह से सख्ती पैदा हो गई होती है, तो सख्ती की वजह। अब देखे ना पानी है, पानी सख्त तो नहीं होता, पानी तो माया लिक्विड है, लेकिन जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं डिफ्रीजर में तो सख्त हो जाता, बर्फ हो जाता है। अब ये सख्त बर्फ पानी तो सख्त तो नहीं था, ये हमारे किसी अमल से सख्त हो गया। अब अगर सख्ती को खत्म करना है तो उसको डीप फ्रीजर से बाहर निकाले, थोड़ी देर रखे तो फिर दोबारा पानी पानी हो जाएगा, नरम हो जाएगा। एक ये दिन में तो मैं क्या मिसाल आपको दूं कि बात होकर सख्ती किसी वजह से आ जाती है, उस वजह को खत्म करें। अगर वो वजह हम है कि मेरी वजह से फलाह में सख्ती आ रही है, तो फिर मैं कोशिश करूं कि मैं अपनी उस आदत को, उस तबीयत को तब्दील करूं ताकि वो सख्ती की तरफ जाए ना। और मिजाज एक होता है बाद वक्त इंसान के, जैसे सख्ती होती है, तो अब सम टाइम ये होता है, क्योंकि सवाल मियां बीवी के से ताल्लुक भी काफी आते हैं। देखिए मैं बात अर्ज करूं आपको, आप ये ना समझें कि शोहर आपकी तमाम तर ख्वाहिशों और सोच के मुताबिक होगा। शोहर ये ना समझे कि मेरी बीवी मेरी तमाम तर ख्वाहिशात तो मेरी आदतों के मुताबिक होगी, नहीं हो सकता। आप दोनों तो मियां बीवी है ना, आप कहीं और 15 20 25 साल पहले बड़े हैं, बीवी कहीं और 15 20 25 साल पड़ी बड़ी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारे मिजाज एक दूसरे से मिलते हो। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके घर में अगर चार बच्चे हैं, ये चारों बच्चे आप ही के घर में पले बड़े हैं, और चारों के मिजाज अलग नजर आएंगे आपको। जब एक मां बाप के पास एक ही घर में पले बड़े बच्चे, इनके मिजाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो जो वैसे ही 15 15 20 20 25 25 साल कहीं और पले बड़े, कहीं और पले बड़े, जब वो दोनों शादी के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, करीब आते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है ना इनके सारे मिजाज एक ही जैसे हो। और अपने तो अब यहाँ क्या आएगा, आप बोले तो ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि यहाँ अल्लाह के प्यारे हबीब ने हुकूक बयान किए हैं, शोहर के लिए बीवी के हुकूक बयान किए, बीवी के लिए शोहर के हुकूक बयान किए। आप इनको पढ़ लें और एक दूसरे के हुकूक को समझकर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का जहन बना लें। जब आपका ये जहन बन जाएगा ना शोहर का कि मैंने अपनी इस बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी है बस, और बीवी का ये जहन बन जाए कि मैंने इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, अब उसमें जो जो रोजमर्रा के मामलात में जो कमी बेशी रहती है, जो किटपिट होती रहती है, जिस वजह से होती रहती है, तो उसको खत्म करें, आदतें तब्दील करें, और ये सोच ले कि यार ये जो खूबी है ना भाई ये ठीक है, बाकी अब मेरे नसीब, वो भी जो खूबी है ठीक है मेरे नसीब, वरना आप कहेंगे हम घर तोड़कर बैठ जाएं, वो कहीं और, तो पता चले कि वो जहां गया वो उससे दो कदम और आ गए, वो गया वो उससे दो कदम और आ गए, तो फिर आप सोचेंगे यार ये पहले ही वाला ही सही था, ये कहां आकर फंस गए। तो ये बाद औकात, क्योंकि अभी आपने वो बड़ी मुसीबत शायद देखी नहीं है, अल्लाह को दिखाई भी नहीं, कि जिसकी वजह से छोटी मुसीबतें, वो यानी कि पहली की मुसीबत बाद औकात तब छोटी लगती है जब उससे बड़ी मुसीबत में बंदा मुब्तला हुआ हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक सेठ अपने मुलाजिम को, नौकर को लेकर किश्ती में सवार हुआ। अब ये किश्ती जब चली तो मुलाजिम जो था, नौकर था, जहां वो फर्स्ट टाइम किश्ती में बैठे थे। अब जब किश्ती पानी पर चली तो पैसेंजर तो थे दूसरे किश्ती के अंदर, जैसे किश्ती पानी पर चली तो किश्ती तो थोड़ी बहुत हिलती रहेगी, अब वो हिल रही थी, अब वो हिल रही थी, तो वो जो मुलाजिम था, नौकर था, वो पहली बार किश्ती में सवार हुआ था, वो उसने चीखना शुरू कर दिया, मैं गया, मैं मर रहा हूं, मुझे उतार दो, मैं वो उसको घबराहट हो रहा था कि ये हिल रही है किश्ती ना, तो वो हिलती हुई किश्ती से वो समझा कि भाई ये तो मैं तो गया। अब उसकी चीखने की वजह से पूरी किश्ती में जितने मुसाफिर थे सारे परेशान हो गए थे, वो उसको उसका सेठ कह रहा है भाई तू चुप हो जा, अभी किनारा आ जाएगा, उतर जाएंगे, उसकी चीखी बंद नहीं हो रही। तो उसी किश्ती में एक अकलमंद आदमी बैठा हुआ था, उसने उस शख्स को कहा कि अगर इजाजत दे तो मैं इसको खामोश करवा दूं, करवा दे, देखिए मैं कुछ करूंगा। हाँ कह रहे भाई इसको खामोश करवा दे, इसने तो जीना मुश्किल कर दिया है। उसने चार आदमी को बुलाया और कहा कि उसको उठाओ पानी में डाल दो। वो चार आदमी आए, इस मुलाजिम को उठाया, नौकर को पानी में डाल दिया। अब वो जैसे पानी में डाला वो हाथ पैर मारने लगा, बचाओ 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 मैं डूबा, बचाओ मैं डूबा, बचाओ मैं डूबा, निकालो मुझे निकालो। वो तो उसने कहा इसको निकालो, और जैसे वो चार आदमी ने उसको दोबारा निकाला और निकाल के फिर किश्ती में बिठा दिया, किश्ती में बिठाया था, ये बैठ गया खामोश। अब खामोश, अच्छा सेठ बड़ा मुतासिर हुआ, ये क्या किया तूने? उसने कहा तो मैंने एक अमल ये किया हुजूर, ये पहली बार किश्ती में बैठा था, इसको लगा कि इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं जिसने फंस गया है, जब मैंने इसको इससे बड़ी परेशानी में डाल दिया ना कि जहां इसको लगा कि अब तो मैं मर रहा हूं, तो वहां उसको बड़ी मुसीबत नजर आई, वो जब उस बड़ी मुसीबत से दोबारा मैंने उसको यहां डाला तो अब इसको ये मुसीबत नजर नहीं आ रही, अब ये बोले ये तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये था कि उसको सुकून मिल गया। मैं समझता हूं कि मैंने आपको एक इस हिकायत इस मिसाल के जरिए काफी कुछ समझाने की और अर्ज करने की कोशिश की है। तो क्यों आप जो है बस अल्लाह ताला इस पर हमें सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ज्यादा ख्वाहिशात दना में यूं में यूं तो मेरे ये थे मेरे वो थे, अब जो अल्लाह ने मंजूर किया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अलबत्ता मैं आपको एक शोहर और बीवी मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के ताल्लुक से एक मदनी फूल बयान करता हूं, इसे गौर से सुन ले। अगर शोहर से बीवी कम मोहब्बत करती हो तो शोहर रोजाना असर की नमाज के बाद बावजू मुंह में मिस्री ये एक शकर नुमा एक डाली सी आती है, टुकड़िया भी होती क्यूब भी होती है, अब तो क्यूब आती हैं, छोटी छोटी सी टुकड़िया आती हैं, तो मुंह में मिस्री डाल रखकर मुंह में रखकर या वदू दो 101 बार अव्वल आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी बीवी का तसव्वुर बांधकर उसके सीने पर दम कर दे, तसव्वुर बांधे। अगर शोहर मोहब्बत कम करता हो तो बीवी यही अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मियां बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। ये अमल सिर्फ मियां बीवी की मोहब्बत के लिए है और चुपके से करना है, ना मियां बीवी एक दूसरे को बताएं ना किसी को पता चले कि गलत फहमी के सबब नुकसान हो सकता है। यह मिला सुनकर रिसाला बीमार आबिद इसके पेज नंबर 42 पर ये बड़ा प्यारा सा ये वजीफा लिखा हुआ, या वदू दो, आप एक बार कह लें या वदू दो। अच्छा वो ये कि ये बेचारी पढ़ रही है और आपको लगेगा ये पता नहीं क्या पढ़ रही है, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए पढ़ा जा रहा है, तो चले चुप कर ही पढ़े लेकिन खुताना करता पता भी चल जाए तो हुस्ते हसन तो रखे ना। तो इस अंदाज पर इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। या वदू दो 101 बार 101 टाइम मुंह में शक्कर की डाली रखकर आपने पढ़ना है और जो मैंने तरीका अर्ज किया है इस पर अमल करना है। जी कॉल दीजिए।
एक सवाल है कि मेरी जो बीवी है ना मेरे बच्चों की माँ, ये हर वक्त नमाज और कुरान मजीद पढ़ती रहती है और अपने दीन में बहुत ज्यादा मसरूफ रहती है, तो जब मैं बात कोई करता हूँ तो सख्त लहजे में मुझसे बात करती है, हालांकि मैं कहता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे प्यार से बात करे, वो कहती है कि बस यही है सब कुछ।
हाय हाय अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए। और अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो मैं इस्लामी बहन से अर्ज करूंगा जो आपके बच्चों की अम्मी है, इस तरह की जो भी इस्लामी बहन है कि यकीनन कुरान की तिलावत आला दर्जे की इबादत है मगर नफली इबादत है, और विर्द वज़ाइफ नफल नमाज ये भी एक नफली इबादत ही है, करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन शोहर की इताअत शोहर की रजा शोहर की फरमा बरदारी ये तो बहुत लाजिम, और मतलब इसमें बास औरतों में तो अगर इस पर अमल ना हो तो औरत गुनाहगार होती है। तो अगर ऐसा ही है जैसा ये कह रहे हैं तो अगर इनसे मोहब्बत और प्यार से बात करना इनसे नरमी से बात करना इनको रिस्पोंड करना अल्लाह की रजा के लिए जो आपको बहुत सवाब दिलाएगा, तो खैर शोहर को चाहिए कि इस पर भी तो एक यूं समझे कि मुझे थोड़ा पहलू नजर आया कि बीवी अल्लाह को याद करने वाली पढ़ने वाली नेकी इबादत करने वाली, लेकिन इल्म की कमी की वजह से बाजों का दूसरी एक इसके वो दूसरी साइड ये कमजोर हो रही है, तो ऐसा ना होने दें बल्कि दूसरी साइड को भी मजबूत करें, इबादत करें तिलावत करें और शोहर की इताअत और फरमा बरदारी भी करें, और उनको भी चाहिए शोहर को कि इनको नरमी और प्यार से समझाते रहे। और कोई और वजह है सख्ती की, जबकि मेरी नजदीक औरत सख्ती ना ही करे, औरत के लिए सख्ती नहीं है, अगर खुदा ना करता कोई शोहर की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम है तब भी आप सख्ती करके शोहर के अंदर तब्दीली कभी भी नहीं ला सकती, नहीं आ सकती, ऐसा नहीं हो सकता। रोटी तब तक नहीं बनेगी जब तक आटा नरम नहीं होगा, आटे में रोटी नहीं बना करती। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और आपकी मुश्किल आसान फरमाए। जी कॉल दें।
निगरानी सुरा से अर्ज है कि जिस घर में घरेलू नाचा के नाता फाकिया हो, इस घर को पुरसकून घर बनाने के लिए कुछ बदनी पूर्ण इरशाद फरमा दें।
एक दूसरे के मिजाज को समझने की कोशिश करें और तिलावत करें, इबादत करें। सूरह बकरा की तिलावत ऊंची आवाज से किसी अच्छे कारी साहब, मतलब जिसको कुरान दुरुस्त पढ़ने आता है उससे करवा लें। चारों कोनों में अजान भी दी जा सकती है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अपने घर में जारी रखें, नमाजें, इबादत, तिलावत, इस तरह का मामला रखें और गुनाह से दूर रहें। अल्लाह ताला आपको मुझे गुनाह से बचाए। अब आप मोबाइल हो या टीवी हो, इसके जरिए आप गुनाह में लगे हुए हैं, अब तो कैसे मतलब के घर में मोहब्बत का इत्तेफाक पैदा होगा। तो इत्तेफाक तो ये और मोहब्बत ना, चाहते तो सब हैं कि हो जे सुरैया पे मुकीम, चाहते तो सब हैं कि हमारे घर में मोहब्बत प्यार इत्तेफाक हो। करे कौन? शोर कहता है कि बीवी करे, बीवी कहता है शोर करे, माँ बाप कहते हैं औलाद करे, औलाद कहती है कि माँ बाप करे। पर सब करेंगे तो होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वन साइड वन वे ट्रैफिक तो नहीं ना चलेगी। सब करेंगे, शोर को चाहिए कि बीवी के लिए अपने जो भी टाइमिंग्स है उसको रखे, बीवी को चाहिए शोर के लिए जो टाइमिंग्स है उसको रखे। तो इंशाल्लाह फिर एक दूसरे का यूं ख्याल रखेंगे तो मोहब्बत और प्यार पैदा होगा। वरना माँ कहें कि मैं कुछ भी ना करूं, सामने वाले मेरे लिए कुछ करे, तो इससे फिर तो आजमाइश में इजाफा भी हो सकता है। मुझे इसमें मैसेजेस आए हुए। अच्छा, घर वाले नमाज में सुस्ती करते हैं, क्या किया जाए? इसके लिए आप फैजान नमाज का दर शुरू करवा दें घर के अंदर, इंशाल्लाह नमाज की सुस्ती दूर हो जाएगी। मदनी चैनल दिखाते रहे, इंशाल्लाह नमाज की सुस्ती दूर हो जाएगी। मोहब्बत, प्यार और नरमी के साथ नेकी की दावत दें, इंशाल्लाह नमाज की सुस्ती अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। अच्छा, सबके साथ ज्यादती करने, गाली गलौज के बाद खुद को मजलूम कहे तो कैसे इस्लाह फरमाए? अच्छा, ज्यादती भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी दे रहे हैं और फिर खुद को मजलूम भी समझ रहे हैं। हाँ, मसला तो है। अल्लाह आसानियां करते प्यारे हबीब के सदके में। देखिए, जब वो बंदा गुस्से में हो ना, उस वक्त उसको समझाना इतना आसान नहीं होता। हर वक्त कोई गुस्से में हो ये जरूरी नहीं होता, हर वक्त गाली गलौज देता जरूरी नहीं होता। बाद वक्त एक अच्छे माहौल में होता है, तो अगर अच्छे माहौल में हो तो फिर निकी की दावत, इसलाह की बात, सवाब की बात, इस तरह की बात उस टाइम पर की जाए। अब है ही अगला गुस्से में और खुदा ना खास्ता बद अखलाकी पर भी उतरा हुआ है, तो उसको थोड़ा खामोश हो जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं और इंतजार करें कि वो नॉर्मल सिचुएशन में आए। तो याद रखिए, इस्लाह जब बंदा नॉर्मल सिचुएशन में हो तो इस्लाह होने की सूरत बढ़ जाती है। इसको कोई रिसाले दे दें, मक्तुल मदीना के रिसाले दे दें, तो इंशाल्लाह इससे भी। अब तो माशाल्लाह हमारे फेसबुक पेजेस के पर, आप वो यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें इस मौजू पर आपको छोटे छोटे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट के क्लिप मिलेंगे, वो भेज दें। बड़ा मोटिवेशन बन होती है और इससे भी इंशाल्लाह इस्लाह की सूरत निकल सकती है। सवाल दीजिए।
निगरानी शुरा की बारगाह में सवाल है कि जब कोई घर में मेहमान आता है तो मेहमान से ये सवाल करना कैसा कि आप क्या खाएंगे, इसके बारे में कुछ मदनी खुलका फरमा दें।
तो सवाल गलत तो नहीं है कि आप क्या खाएंगे। अगर उसकी पसंदीदा चीज आप उसको खिला सकते तो इंशाल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा। मगर ये देख लें कि आपकी पोजीशन है ऐसी कि वो कुछ मांग ले। आप देखा क्या खाएंगे, देखा पिज्जा खिला दो, पिज्जा तो बहुत महंगा आता है। तो यू तो आजमाइश हो भी सकती है, देख लीजिए मेहमान, क्योंकि जिस तरह मेहमान को भी अपने इतने आदाब का शायद अंदाजा नहीं होता। जैसे मेहमान ये नहीं, शायद वैसे नॉर्मली मेहमान ये कहते हैं जी आप जो खिलाएंगे इंशाल्लाह हम खा लेंगे, अगर खाना हुआ। वरना अमूमन मेहमान ये कहते हैं नहीं नहीं आप तकलीफ ना करें, तो आप कहते नहीं आप तकल्लुफ ना करें, तो वो कह रहे नहीं आप तकलीफ हो जाएगी, तो कहीं आपको तकल्लुफ हो जाएगा, तकलीफ और तकल्लुफ में फिर कुछ बीच की को रास्ता निकल ही आता है। तो फिर इसमें अगर उसने कोई चीज मांग ली, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं भूख लगी है, मेहमान बोलते हैं भूख नहीं लगी मुझे, भूख लगी होती है, तो ऐसा जुमला कहे कि आपको جھوٹ میں نہ پڑنا پڑے. اور اگر مہمان یہ سمجھتا ہے کہ میزبان تکلیف میں آ جائے گا تو میکسیمم اوائڈ کریں, یا چائے بسکٹ سے بھی اگر گزارا ہو سکتا ہے چائے بسکٹ سے گزارا کر لیں. اور اللہ نے اگر میزبان کو اگر وسعت دی ہے تو پھر وہ اچھی سے اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرے, عمدہ سے عمدہ کھانا اپنے مہمان کو پیش کرے, تو انشاءاللہ جتنی زیادہ اچھے اخلاق اور اچھی انداز سے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا تو رب نے چاہ تو اس کو اسی قدر اجر و ثواب بھی ملے گا. مگر سوال والا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اور اس میں بعض اگر بچوں سے پوچھ لیتے اچھا بچہ آپ کیا کھاؤ گے, آپ بچے ہو تو بچہ تو بچہ ہے, بچے نے جب مانگ لیا تو پھر آپ کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کر سوال کیجئے گا. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ بچے کو اگر زیادہ نرمی کریں تو وہ بگڑ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں زمین ہے نا, زمین پانی مانگتی ہے فصل کے لیے. اگر اس سے پانی کم دیا جائے یا نہ دیا جائے تب بھی زمین برباد ہو سکتی ہے, آپ کو فصل نہیں دے گی. اگر پانی زیادہ دے دیا جائے تب بھی زمین ضائع ہو سکتی ہے. اعتدال, بیلنس اس کو کہتے ہیں, افراط و تفریح سے بچنا کہتے ہیں. تو اس کو اختیار کریں, بالکل نرمی رکھیں, مگر نرمی ہے. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سختی کی بھی تو کچھ درجے ہیں نا, سختی کے درجے پہ بیٹا آپ کو سمجھا دیا نہیں کرے, اوکے اب نہیں کرنا, یہ بھی تو آپ نے اس کو ایک نوٹس ہی کیا نا. سختی کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطلب چیخو پکار کرے, شاؤٹنگ کرے, مار پیٹ کرے, یہ ضروری تھی تو اٹھا کر پھینکا بچے کو پھینکا, تو یہ تو عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں. تو سختی کی بھی کیٹیگری کر لیں کہ میں اے گریڈ کی سختی, بی گریڈ کی سختی, سی گریڈ کی سختی, ڈی گریڈ کی سختی, وہ بھی اس حد تک جائیں جہاں تک شریعت کی آپ حد میں رہیں گے. تو یہ ہے, تو بگڑتے نہیں ہے. زیادہ نرمی کیا ہوتی ہے, ہم کو اتنی نرمی ویسے ہی اتنی آتی نہیں ہے. پوچھ گچھ رکھنا, معلومات رکھنا, اور اچھے ماحول کی طرف دیں گے تو انشاءاللہ پھر اور بہتری آ جائے گی. بچے برے ماحول کی طرف جائیں گے تو پھر اور خرابی پیدا ہو جائے گی. تو بہت کم چانس ہے یوں زیادہ نرمی کریں. زیادہ کا لفظ ایک تھوڑا سا نوٹس ہے, نرمی کریں, زیادہ بھی جہاں ضرورت ہو تو وہاں زیادہ نرمی کا اظہار کریں, ورنہ کم نرمی کا اظہار کریں. ورنہ اگر سختی کی آ جاتے تو زیادہ سختی کی طرف جانے کی ہو جائے, کم سختی کی طرف جائے. اب یہ دیکھیں, یہ تو والدین کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں پر کم کرنا ہے, کہاں پر زیادہ کرنا ہے. اللہ نے چاہ تو اس کے آپ کو اچھے نتائج مرتب ہو گئے. جی کال دیجیے.
گرانے سورا, آپ سے میرا یہ سوال ہے, لڑکی والے شادی میں ویڈیو رکھنا نہیں چاہ رہے, لڑکے والے کہہ رہے ہیں شادی میں ویڈیو رکھو, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شادی وغیرہ اور اس طرح کے مواقع پر جو ویڈیوز بنتی ہیں یہ گناہ سے بچ کر تو شاید نہ بن سکے. اب میں بھی ویڈیو پر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ اس ویڈیو کا پرپز آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے کی دعوت, یہ سب مدنی چینل ہے, دعوت اسلامی کا انداز ہے, یہ اس طرح علماء اہل سنت الحمدللہ ہمارے لیے اصلاح کا سامان کرتے ہیں. لیکن جو شادی, سالگرہ, منگنی اور اس طرح کے دیگر مواقع کے اوپر جو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے, تو اس میں آپ اپنے آپ کو بے پردگی سے, بے شرمی سے, بے حیائی سے کیسے بچائیں گے؟ پھر اس کو نکل جانے کا ڈر ہے نا. میں تو پرسنلی طور پر یہ موبائل کے ذریعے بھی جو ہم فیملیز کی ویڈیوز بنا کر سیو کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. بلکہ وہ واٹس ایپ کے اوپر, وہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, ڈی بی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, جہاں ڈی بی نا جو بولتے ہیں, جو سائڈ میں آپ اپنا ایک نشانی رکھتے ہیں, اس میں بھی عورتوں کی تصویریں آ جاتی ہیں. اور بلکہ وہ جو میسیجز فیس بک وغیرہ پر اس طرح کی چیز ہوتے ہیں, اس میں بھی اپنی پہچان کے لیے عورتوں کی تصویر ہوتی ہے, پتہ نہیں کوئی اپنی ڈالتا ہے کس کی ڈالتا ہے, لیکن عجیب سا ماحول ہے. تو ان سے تو بچنا ہی چاہیے. اور ایک اگر آپ بولے گا نہیں فیمیل کی ویڈیو بنائے گی, تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو ویڈیو بنانے کی, جب آپ نے ویڈیو دکھانی کسی کو نہیں ہے, کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی؟ اور اس میں گناہوں میں پڑ جانے کا اندیشہ موجود ہے, اور چیزیں لیک ہو جانے کا اندیشہ بالکل موجود ہے. میں تو آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اس طرح کے مواقع پر, اس طرح کے چیزوں کے لیے ویڈیو کیمرے کو آپ استعمال نہ کریں, نہ اس طرح کی کوئی امیجز لیں. دلہن کی بھی امیجز سنبھال لیتے ہیں, یہ سنبھال لیتے ہیں, نہیں ہم کسی کو نہیں دکھائیں گے تو کیوں بنا رہے بھائی. किसी को भी नहीं दिखाना तो है, उसको दिखाया उसको शेयर कर दे, उसको शेयर कर दे, चीजें निकल जाएंगी। बीवी अपने शोहर को कुरान पाक की तालीम दे सकती है या नहीं? बिल्कुल, अगर बीवी को कुरान दुरुस्त पढ़ने आता है और शोहर को नहीं पढ़ने आता, मैं कहता हूँ शोहर कहे कि प्लीज मुझे सिखा दीजिए, क्या रजा है यार। शोहर को आता है, बीवी को नहीं आता, वो सिखा दे, घर की बात घर में रहा। बीवी थोड़ी को बाहर ढोल बजाएगी कि मैं अपने शोहर को कुरान पढ़ाती हूँ, तो ये तो वैसे ही उसकी गलती होगी। तो अच्छा है अगर बीवी को अगर कुरान दुरुस्त पढ़ने के लिए आता है, उसको इस तरह के शरी मसाइल या शरी अहकाम पता है। मर्द ने कोई दीन की तालीम हासिल नहीं की, हो सकता है कि इसकी जो बच्चों की अम्मी है या इसकी बीवी है वो माशाल्लाह आलिमा बनी हुई हो, मदनिया हो, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आलिमा बनी हुई हो माशाल्लाह। और कोई भी इस तरह का विषय, हमारे यहाँ इस्लामी बहनें शरीयत कोर्स करती हैं, आपको तो मैं दावत देता हूँ इस्लामी बहनों को शरीयत कोर्स करें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, इस्लामी भाई भी शरीयत कोर्स करें और सलाह इल्म दीन हासिल करें, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होंगे। तो अगर बीवी सिखाती है और शोहर सीखता है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो चुप चुपा कर भी कर ले चले, किसी को बताने की जरूरत, बच्चों को भी ना बताएं, हो तो सकता है ना, मुमकिन तो है। अगर ऐसा आपको फील होता है कि किसी को पता ना चले तो घर की बात घर में ही रहेगी और आपको कुरान पढ़ने भी आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
रसूल।